हरे कृष्णा। आप सबका श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में स्वागत है। पुनः उसी विषय को आगे जारी रखेंगे। कौन सा विषय? हाँ, भक्ति के 6 लक्षण। ये विषय को आगे बढ़ाएं ना? मतलब हाँ, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। हाँ, तो रूप गोस्वामी ने भक्ति के कितने प्रमुख लक्षण बताए हैं? 6। पहला, क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि मतलब भक्ति हमारे सारे क्लेशों को नष्ट करता है, हमारे सारे दुखों को, कष्टों को जड़ से उखाड़कर उनको नष्ट करता है। भक्ति का ये एक गुण है, एक लक्षण है। स्वाभाविक तौर से भक्ति करने से ये 6 चीजें खुद ब खुद हो जाती हैं, और उनमें से पहला है कि हमारे सारे दुख, हमारा अज्ञान, क्लेश सब नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, शुभदा। शुभदा मतलब भक्ति ही एकमात्र चीज है जो शुभ है, शुभदा को प्रदान करती है, मतलब सबके हित के लिए होता है, सबको आकर्षित करता है। भक्ति का आनंद अन्य सारे आनंदों से श्रेष्ठ है, क्योंकि ये शाश्वत है और दूसरे शाश्वत नहीं है। तीसरा लक्षण कौन सा है भक्ति का? मोक्ष बृहदाकृत, लघुताकृत। मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को बहुत तुच्छ बनाने वाला, मतलब भक्ति वो चीज है जिसके सामने मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है। चौथा कौन सा है? आप भूल गए हैं। सुदुर्लभा। सुदुर्लभा का मतलब है कि भक्ति बहुत ही दुर्लभ चीज है, आसानी से नहीं मिलती है। और उसके बाद पांचवा, सांद्रानंद विशेषात्मा, कि भक्ति का आनंद इतना तीव्र है कि इसके सामने और सारे जो सुख हैं वो तुच्छ हो जाते हैं। और छठा, श्री कृष्णाकर्षिणी। भक्ति ही एकमात्र वस्तु है जो कि भगवान श्री कृष्ण को आकर्षित कर सकती है। हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारा नाम, हमारा सौंदर्य, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, घर, गाड़ी, ये सब चीजें भगवान को आकर्षित नहीं कर सकती हैं, लेकिन हमारी भक्ति भावना से भगवान श्री कृष्ण आकर्षित होते हैं। इसलिए अगर हमें भगवान श्री कृष्ण को जीत लेना है, उनको आकर्षित करना है, तो हमें भगवान का भक्त होना चाहिए। तो अब तक हमने कितने लक्षणों की चर्चा की है? पहले 2, मतलब क्लेश अग्नि और शुभदा, और आज हम तीसरे लक्षण की चर्चा करेंगे, और वो है मोक्ष लघुताकृत। भक्ति मतलब क्या है? भक्ति मतलब हमारे सारे इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। बहुत सरल, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर चुके हैं, आप सबको याद है। भक्ति की सरल परिभाषा क्या है? अपने सारे इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना, अपने हाथ से, अपने पैरों से, अपने आंखों से, अपने कानों से, जिह्वा से, अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, हर तरह से भगवान की सेवा करना। और कैसी भावना से? अनुकूल भावना से। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो उत्तम भक्ति वो है जिसमें भक्त किसी भौतिक चीज की अपेक्षा नहीं करता है, अहेतु की भाव से भगवान की भक्ति या सेवा करता है। तो ऐसे सेवा जब भक्त करता है तो उसको जो आनंद या जो रस, जो स्वाद उस भक्ति में मिलता है वो इतना तीव्र है, इतना ऊंचा है कि उसके सामने मुक्ति या मोक्ष ये भी तुच्छ नजर आता है। अब मुक्ति क्या है, कोई बता सकते हैं? मुक्ति मतलब क्या? जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना, इसको मुक्ति बोलते हैं। तो हमें मुक्ति क्यों पाना चाहिए? मुक्ति पाने की आवश्यकता है कि नहीं है? मुक्ति पाना चाहिए क्योंकि हमें ये जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना है। हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, और आत्मा इस समय 84 लाख योनियों में अलग अलग शरीर धारण करती है और बारंबार एक शरीर को त्याग कर उसे दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है और इसको संसार का चक्र कहते हैं। इस प्रकार से 84 लाख योनियों में आत्मा अनादि काल से भ्रमण करती आई है और ये संसार चक्र जब तक चलेगा तब तक हमारे दुख रहेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, अर्थात ये जन्म मृत्यु का चक्र, यही मूल बीमारी है, यही मूल दुख है। जब तक हम ये संसार के चक्र में फंसे हुए हैं तब तक हम दुख का निवारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीव को चाहिए कि वो इस संसार के चक्र से मुक्त हो जाए, क्योंकि जीव का स्वरूप है, जीव का स्वभाव है सच्चिदानंद। सत मतलब अमर है वो, चित मतलब ज्ञान से पूर्ण है, आनंद मतलब आनंद से पूर्ण है। ये जीव का स्वभाव है, लेकिन इस समय सच्चिदानंद जीव अपने सच्चिदानंद स्वभाव को भूल चुका है और जो इस जड़ प्रकृति से संपर्क में आकर अपने आप को वो भी जड़ प्रकृति समझता है। मैं ये शरीर हूं, इसको कहते हैं माया। मैं हूं आत्मा, मैं तो सच्चिदानंद हूं, लेकिन अपने आप को शरीर समझता हूं जो कि जड़ है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थं यत्कृतं चाभिपद्यते। श्रीमद् भागवत में बताया हुआ है कि वास्तव में आत्मा तो शुद्ध है, उसे ये भौतिक गुणों से कुछ लेना देना नहीं होता है, परंतु इन माया के चंगुल में फंसकर मोहित हो जाता है और फिर वो अपने आप को ये प्रकृति या जड़ पदार्थों का बना हुआ एक वस्तु समझने लगता है जो कि शरीर है। ये शरीर क्या है? ये शरीर केवल थोड़े बहुत जड़ पदार्थों का बनाया हुआ एक यंत्र है, बस। ये जीवित नहीं है, ये चेतन नहीं है। आत्मा केवल चेतन है, शरीर जीवित नहीं है। लेकिन अज्ञानवश सच्चिदानंद आत्मा अपने सच्चिदानंद धाम को भूलकर यहां पर इस जड़ प्रकृति में अटक गई है। इसलिए पुनः इस आत्मा को अपने घर में लौटा देना है। आत्मा का घर कौन सा है? आध्यात्मिक जगत, सच्चिदानंद जगत। ये जगत जो जड़ प्रकृति है, ये असत है, अचित है, निरानंद है, बिल्कुल उल्टा है आत्मा के गुणों का। तो इस प्रकृति में अटक के हमें बारंबार मृत्यु का सामना करना पड़ता है, हम अज्ञान में पड़ जाते हैं और हमें दुख भुगतने पड़ते हैं। लेकिन सच्चिदानंद आत्मा ऐसे असत अचित निरानंद जगह में कैसे आई? अज्ञान की वजह से। इसलिए इस सच्चिदानंद आत्मा को अपने सच्चिदानंद घर में, सच्चिदानंद धाम में फिर से भेज देना चाहिए, और वो धाम है भगवान का धाम। हम सब वहां से आए हैं, भगवान का विरोध करके, भगवान के नियमों का उल्लंघन करके, भगवान से विमुख होकर, स्वतंत्र भावना से भोग करने की इच्छा रख के हम यहाँ पर इस भौतिक संसार में आए हैं। लेकिन अभी हमारे अहंकार और भोग प्रवृत्ति को त्याग कर हमें वापस लौट जाना है भगवान के धाम में। भगवान के धाम को कहते हैं वैकुंठ, इस जगत को कहते हैं कुंठ, क्योंकि दुखों से भरा हुआ है। वैकुंठ में कोई क्लेश नहीं, कोई दुख नहीं। इसलिए हर एक जीव को चाहिए कि वो अपने मुक्ति के बारे में सोचे, मतलब वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने का सोचे और ये योजना बनाए कि मैं भगवान के धाम में कैसे जा सकता हूँ वापस, क्योंकि वही मेरा मूल उद्गम है। वैसे दो प्रकार की मुक्तियां होती हैं। एक है कि भगवान के धाम में जो अलग अलग लोक हैं, ग्रह हैं, उनमें प्रवेश करके भगवान का संग करना, उनकी सेवा करना। और दूसरे प्रकार की मुक्ति है कि भगवान के धाम में जो निराकार प्रकाश, जो कि भगवान के दिव्य शरीर का तेज है, उस तेज में, उस प्रकाश में विलीन हो जाना। जैसे हम देखते हैं कि यह भौतिक ब्रह्मांड में एक सूरज है, ये सूरज सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूरज एक ठिकाने है लेकिन उसकी रोशनी सब जगह फैल गई है। रोशनी या प्रकाश का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, लेकिन सूरज का रूप है। सूरज को चलाने वाले सूर्य देव हैं। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम में, उनके आध्यात्मिक जगत में अनंत कोटि आध्यात्मिक ग्रह हैं, लोक, जो सब सच्चिदानंद हैं, उनका नाश कभी नहीं होता, आनंद प्रदान करने वाले हैं। और वहां पे भगवान के विभिन्न रूप निवास करते हैं। अनंत कोटि वैकुंठ लोकों में से जो प्रमुख लोक है भगवान के धाम में, उसको कृष्ण लोक कहते हैं या गोलोक वृंदावन कहते हैं। तो गोलोक वृंदावन क्या है? वैकुंठ लोकों का प्रमुख लोक है। जैसे भारत में कितने सारे शहर हैं, लेकिन प्रमुख शहर है नई दिल्ली, जो कि राजधानी है। ठीक उसी प्रकार से वैकुंठ लोकों में अनंत कोटि लोक हैं, जो सब आध्यात्मिक हैं, सब भगवान के धाम के अंदर हैं, परंतु कृष्ण लोक ये मुख्य लोक है, आध्यात्मिक जगत की राजधानी है। और इस राजधानी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण केवल कृष्ण लोक में निवास करते हैं, तो जो अनंत कोटि वैकुंठ लोक अन्य हैं, वहां पे कौन निवास करते हैं? भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं। भगवान के लिए कोई कठिनाई की बात नहीं है। भगवान जो भी सोचते हैं उसको कर सकते हैं। भगवान अपने आप को विस्तारित करके हर एक वैकुंठ लोक के प्रतिष्ठाता देव बन के रहते हैं, और उनके साथ में अनंत कोटि भक्त उनके रहते हैं। तो सोचिए आध्यात्मिक जगत कितना बड़ा है। जिस तरह से इस पृथ्वी लोक में कई देश हैं, हर एक देश की एक राजधानी है, उसका एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, और राजा या राष्ट्रपति उस देश में अकेला नहीं रहता। अगर अकेला होता तो राजा बनने का मतलब क्या है? प्रजा के बिना राजा का कोई मतलब नहीं। तो राष्ट्रपति या राजा के साथ में बहुत सारी प्रजा रहती है जो राजा की सेवा करती है। ठीक उसी प्रकार से अनंत कोटि वैकुंठ लोकों में हर एक लोक के ऊपर भगवान के एक अवतार हैं, उनके विस्तारित रूप हैं, जो वहां निवास करते हैं, वहां के अधिष्ठाता देव हैं, और उनके साथ ये सारे भक्त रहते हैं जो सच्चिदानंद हैं, जो पूरी तरह से शुद्ध हैं, और वो उनकी सेवा करते हैं, भगवान का संग करते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, बिल्कुल शुद्ध भक्त, शत प्रतिशत शुद्ध भक्त, केवल वही इन वैकुंठ लोकों में प्रवेश करके भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, वो अगर भगवान के धाम को प्राप्त हो भी जाते हैं, वैकुंठ लोकों को नहीं जाते, केवल उस निराकार ज्योति या प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। उनका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कुछ नहीं। तो इस प्रकार से मुक्ति ये दो प्रकार की हो सकती है। लेकिन भगवान के भक्त जो हैं, उनको केवल दूसरे प्रकार की, पहले प्रकार की मुक्ति मिलती है, मतलब वैकुंठ लोकों में प्रवेश करना। लेकिन साधारणतः जब हम मुक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, तो जन साधारण सभी को लगता है मुक्ति का मतलब भगवान में लीन हो जाना। आप कहीं किसी से भी बात कीजिए, कोई भी व्यक्ति है जो कोई शास्त्र में रुचि रखता है, आध्यात्मिक प्रवचन में भाग लेने जाता है, सत्संगी है कोई व्यक्ति, इस मंदिर में उस मंदिर में कुछ जाता है, उसे पूछिए मुक्ति का मतलब क्या है, निश्चित रूप से वो यही जवाब देगा कि भगवान में लीन हो जाना। ऐसे प्रकार की मुक्ति भगवान के भक्त पसंद नहीं करते हैं। इसको एकत्व कहते हैं या सायुज्य, सायुज्य मुक्ति। भगवान के भक्त जो हैं, ऐसे मुक्ति को क्यों नहीं पसंद करते? कैवल्यम नरकायते। वो ऐसे कैवल्य को, भगवान में लीन हो जाने की पद्धति को नरक के बराबर समझते हैं। क्यों इतनी घृणा भक्तों को है ऐसे भगवान के निराकार में लीन हो जाने के लिए? क्योंकि जब जीव भगवान के निराकार स्वरूप में लीन हो जाता है, तो फिर वो वैसे ही पड़ा रहता है, भगवान की सेवा नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति अपने कमरे में बैठा रहे, उसको बोला जाए कि आपकी आयु 1000 साल की होगी, लेकिन आपको इसी कमरे में, इसी कुर्सी में बैठे रहना है 1000 साल, तो बेचारा क्या करेगा? ऐसे बैठ जाएगा, उसको कोई आनंद नहीं, कुछ नहीं, किसी की सेवा नहीं कर पाएगा, आनंद नहीं ले पाएगा। तो इसी प्रकार से जो भगवान के निराकार के प्रकाश में लीन हो चुके हैं, उनको भगवान की सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए ये जो निराकार में लीन होने की मुक्ति है, भगवान की सेवा में एक अड़चन बन जाती है, एक बंधन बन जाता है। इसलिए भक्त लोग कभी भी ऐसे मुक्ति को पसंद नहीं करते हैं। हनुमान जी की एक बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है, वो प्रभु श्री रामचंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप चाहे तो मुझे मुक्ति दिला सकते हैं, आप चाहे तो मुझे आपके निराकार स्वरूप में लीन होने का वरदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि निराकार में लीन हो जाने से मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा? जो मेरी भावना है कि आप मेरे प्रभु हैं और मैं आपका दास हूं, और मैं आपकी निरंतर नित्य सेवा करना चाहता हूं, ये सेवा कैसे संभव होगा? अगर मैं आप में लीन हो जाऊंगा, तो हम दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा, फिर सेवा कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैं ऐसी मुक्ति नहीं चाहता हूं। भगवत गीता के जशी आहे तशी, जैसे है वैसे, यथारूप की भूमिका में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर वाक्य बताया है, और वो ये है कि सनातन जीव, सनातन शब्द का अर्थ क्या है? जो शाश्वत है, जो अमर है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। सनातन जीव का सनातन संबंध सनातन भगवान के साथ सनातन धाम में है। कितना सुंदर है बात। फिर से हम सब इकट्ठे होकर ये बोलेंगे, सनातन जीव का सनातन भगवान के साथ सनातन धाम में सनातन संबंध है। कितनी सरल बात है। तो जीव इस सनातन संबंध को छोड़ना नहीं चाहता है। वो सनातन संबंध जीव और भगवान के बीच में कौन सा है? प्रेम का है, सेवा का है। तो इस सनातन संबंध को नष्ट करके लीन हो जाने से सेवा कैसे होगी? इसलिए भक्त हमेशा यही चाहता है कि उसका जो भगवान के प्रति सनातन संबंध है वो सनातन धाम में, भगवान के धाम में जाके स्थित हो जाए। ये है सुंदर बात। इसलिए भगवान के भक्त जो हैं, वो कभी इस प्रकार की निराकार में मुक्ति लेना नहीं चाहते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं, भक्ति करने से, भगवान की सेवा करने से इतना आनंद प्राप्त करते हैं कि वास्तव में उनको संसार की कोई भी चीज इसकी जरूरत नहीं होती है। इन सब को तुच्छ समझते हैं और मुक्ति को भी तुच्छ समझते हैं, क्योंकि उनको इतना आनंद मिल रहा है। कपिल देव भगवान श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि जो उनके भक्त होते हैं वो कभी भी किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं मांगते, तो फिर वो इस संसार की चीजें क्या मांगेंगे। उसी प्रकार से बिल्वा मंगल ठाकुर, जो कि बहुत महान आचार्य रहे, वैष्णवाचार्य, उन्होंने एक सुंदर किताब लिखी थी जिसका नाम है कृष्ण करणामृत, और उसमें उन्होंने एक सुंदर श्लोक लिखा है, भक्ति स्वयं स्थिरतरा भगवान यति स्याद दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। बिल्वा मंगल ठाकुर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, भक्ति स्वया स्थिरतरा, जब मैं आपके भक्ति में स्थिर हो गया हूं तो मुझे आशा है कि दिव्य किशोर मूर्ति, आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन मुझे निश्चित होगा। और जब मुझे आपका दर्शन निश्चित है, आपकी सेवा करने की संधि निश्चित है, तो फिर मुझे इन अन्य चीजों की क्या आवश्यकता है, मुक्ति इत्यादि। और जहां तक मुक्ति का सवाल है, मुक्ति स्वयं हाथ जोड़कर मेरे दरवाजे के सामने खड़ी है। मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान, मुक्ति देवी मेरे दरवाजे में खड़े हैं हाथ जोड़कर कहते हुए, श्रीमान कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। लेकिन भक्त क्या कहता है, मुक्ति माता जी आपके लिए समय नहीं है, हमको भगवान की सेवा करनी है, हमको मुक्ति के पीछे नहीं जाना है, हमको भगवान की सेवा में इतना आनंद आता है कि आपके लिए हमें समय नहीं है। लेकिन मुक्ति देवी वहां भगवान पे के दरवाजे, भक्त के दरवाजे के बाहर हाथ जोड़कर खड़ी है कि मैं सेवा में हाजिर हूं। और वो अकेली खड़ी नहीं है, धर्मार्थ काम गतय समय प्रतीक्षा। धर्म अर्थ काम, अर्थ मतलब सारे प्रकार के जो ऐश्वर्य यहाँ के हैं वो भी खड़े हैं हाथ जोड़कर। काम नाना प्रकार के इंद्र तृप्ति के साधन वो भी खड़े हैं हाथ जोड़कर, मुझे स्वीकार कीजिए। लेकिन भक्त कहता है, आप किसी के लिए मेरे लिए टाइम नहीं है, समय नहीं। सब आके बोल रहे हैं, धन आके कहता है मुझे स्वीकार करो, हर प्रकार की इंद्र तृप्ति आती है कहते हैं मुझे स्वीकार करो, मैं आपके द्वारा भोग्य वस्तु हूं, मेरा भोग कीजिए। लेकिन भगवान के भक्त कहते हैं नहीं, समय नहीं, इच्छा भी नहीं। तो कितनी सुंदर बात है। इस प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं वो भक्ति को इतना श्रेष्ठ समझते हैं, इसमें इतना आनंद प्राप्त करते हैं कि मुक्ति की बात तो क्या, वो इन चीजों को तो बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं संसार की चीजों से। श्रीमद् भागवत में और एक सुंदर श्लोक है, तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम न अपुनर्भवम भगवत भक्ति संगत से मर्त्यानाम के मुताशिषः। भक्त कहते हैं कि भगवत भक्ति संगस्य, जो भगवान के भक्त होते हैं उनका लव मात्र, एक क्षण मात्र जो संग है वो इतना मूल्यवान है कि इसके सामने, इसकी तुलना स्वर्ग की प्राप्ति से भी नहीं की जा सकती और पुनर्भवम या मुक्ति से भी नहीं की जा सकती। मर्त्यानाम की मुताशिषः, तो इस संसार के छोटे मोटे वरदानों की बात ही दूर है। तो सोचिए, भक्ति इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है कि भक्त जो कि भक्ति कर रहा है, ऐसे शुद्ध भक्त का एक संग भी अगर, एक क्षण का संग हमें मिल जाए तो वो एक क्षण का संग मुक्ति से भी ज्यादा मूल्यवान है। है ना, कितनी बढ़िया बात। तो फिर ये स्वाभाविक है कि भगवान के भक्त जो होंगे वो मुक्ति को बिल्कुल तुच्छ समझेंगे। तो प्रश्न ये आ सकता है कि आपने कहा था कि मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो है निराकार में लीन हो जाना और दूसरा है वैकुंठ लोकों में प्रवेश करना। तो ठीक है, हम समझ गए कि निराकार में हम लीन नहीं होना चाहते हैं, लेकिन वैकुंठ लोकों में जाना ये जो मुक्ति है ये भी क्या वर्जित है हमारे लिए, इसको भी क्या भक्त लोग तुच्छ समझते हैं। तो इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में बताया हुआ है कि चार प्रकार के ये वैकुंठ के मुक्ति होती है। सायुज मुक्ति मतलब भगवान में लीन हो जाना, ये पांचवा है। कुल मिलाकर पांच प्रकार की मुक्ति, उनमें से एक है निराकार में लीन हो जाना। उसको तो भक्त लोग स्वीकार ही नहीं करते, उसको तो बिल्कुल ठुकरा देते हैं। लेकिन जो अन्य चार प्रकार की मुक्तियां हैं जो कि हमें वैकुंठ लोक में भगवान के सानिध्य में ले जाते हैं, भगवान की सेवा करने का मौका देते हैं, ये कौन से चार प्रकार की मुक्तियां हैं? एक को कहते हैं सालोक्य। सालोक्य मतलब उसी लोक में जाना जहां भगवान रहते हैं, उसी ग्रह में जाना। क्योंकि अनंत कोटि लोकों में से हर एक लोक में भगवान के रूप हैं, तो उस लोक में जाकर भगवान के संग में रहना। दूसरा है सारष्टि। सारष्टि मतलब भगवान की तरह ऐश्वर्य प्राप्त करना। भगवान अपने भक्त के प्रति इतने ऋणी हो जाते हैं कि अपना सब कुछ भक्त को दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान जब भक्त को सब कुछ दे देते हैं तो वो कंगाल हो जाते हैं, ऐसा नहीं। अगर संसार का व्यक्ति अपना सब कुछ किसी और को दे दे तो उसके पास कुछ नहीं रह जाएगा, लेकिन भगवान सब कुछ देते हैं फिर भी उनके पास बहुत कुछ रहता है। ये है भगवान। भगवान की पूर्णता का मतलब ये है, ओम पूर्णमदः पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान से जितना भी उत्पन्न होता है भगवान में कोई घटन नहीं होती, वो पूर्ण के पूर्ण ही रहते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों के पास सारी ऐश्वर्य होते हैं, इसको सारष्टि कहते हैं। भगवान के धाम में जाकर भगवान को सारे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। तीसरा है सामीप्य, मतलब भगवान के बहुत समीप जाकर वो उसे जाने का चांस मिल जाता है। जैसे कोई राजा है, राजा को कोई मंत्री बन गया, उसका धोबी बन गया, उसके कपड़े इस्त्री वाले बन गया, तो राजा का इतना समीप जाना ये बहुत एक दुर्लभ बात है, सभी को नहीं मिलता है। तो यह है सामीप्य मुक्ति, जिसमें जीव भगवान के सानिध्य में जाता है, बहुत करीब जाता है। और चौथे प्रकार की मुक्ति है सारूप्य मुक्ति, मतलब भगवान की तरह ही सुंदर रूप हो जाता है उसका। भगवान के चतुर्भुज रूप को आपने देखा है ना, सांवला रंग और सुंदर उनके आंख इत्यादि, इन जिस रूप का वर्णन शास्त्र में बहुत विस्तार में किया हुआ है। तो भगवान के भक्तों को ठीक ऐसा ही रूप मिलता है वैकुंठ लोकों में। लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि भगवान और भगवान के भक्त एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंतर कैसे पता चले कि भगवान कौन है और भक्त कौन है, कोई बता सकते हैं? कौस्तुभ मणि पहनते हैं भगवान अपने वक्षस्थल में, कौस्तुभ मणि केवल भगवान पहनते हैं, भगवान के भक्त नहीं पहनते हैं। और दूसरा श्रीवत्स, श्रीवत्स ये एक सफेद बाल है, लक्ष्मी का प्रतीक है, जो भी भगवान के वक्षस्थल में है। श्रीवत्स को देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये भगवान है, भगवान के भक्त नहीं है। इन दो तीन चिन्हों को छोड़कर आप अंतर बता नहीं पाएंगे कि भगवान कौन है, उनके भक्त कौन है। विष्णु दूत और विष्णु बराबर वैसे ही लगते हैं। तो ये है सारूप्य मुक्ति, देखिए कितनी सुंदर बात है। और ज्यादातर जो भक्त वैकुंठ लोक की प्राप्ति करते हैं उनको ये चारों मुक्तियां मिल जाती हैं। भगवान की तरह रूप मिल जाता है, भगवान का सानिध्य मिल जाता है, भगवान के ऐश्वर्य मिल जाते हैं, और जब सानिध्य मिलता है तो सालोक्य तो है ही। तो क्या भक्त को ऐसे चार प्रकार की मुक्तियां स्वीकार करनी चाहिए? जबकि भगवान के निराकार में लीन हो जाने की मुक्ति उनको स्वीकार नहीं है, उनको नरक के समान मानते हैं, तो ये चार प्रकार की मुक्तियां जो हैं, उनको क्या स्वीकार करने चाहिए? वैसे देखा जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आखिर ऐसे मुक्तियां केवल भगवान के भक्तों को ही मिलते हैं, ज्ञानी को, योगी को, कर्मी को नहीं मिलते। और भगवान के भक्त जो हैं, उनको ऐसे मुक्तियां मिलकर ही रहेंगे, न चाहते हुए भी उनको मिल जाएंगे, भगवान प्रदान कर देंगे। और भगवान के धाम में जाकर ये चार प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त करके भगवान का भक्त क्या करने वाला है? उधर जाके भगवान की सेवा ही करेगा। इसलिए चार प्रकार की मुक्तियां भगवान के भक्त को पाना ये कोई गलत बात नहीं है। वैष्णव के लिए सायुज मुक्ति बिल्कुल वर्जित है, लेकिन ये चार प्रकार की मुक्ति ये वर्जित नहीं है। अगर इच्छा करे भी कि मैं वहां जाके भगवान की सेवा करूंगा, वो गलत नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान के भक्त ये चार प्रकार की मुक्तियों को भी नहीं चाहते हैं। तो देखिए भक्त कितने महान हैं। क्यों नहीं चाहते? चार प्रकार की मुक्तियां नहीं चाहते हैं, तो भगवान के भक्त क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जोर से बोलिए, सेवा। बस ये जादू का शब्द है हमारे लिए, सेवा। भगवान के भक्त केवल भगवान की सेवा चाहते हैं। और सेवा अगर नरक में मिले, पृथ्वी लोक में मिले, स्वर्ग में मिले, भगवान के धाम में मिले, जहां भी क्यों न हो, भगवान के भक्त हाजिर हैं सेवा के लिए, उनको और कुछ नहीं चाहिए। शिवजी पार्वती देवी को श्रीमद् भागवत में बताते हैं, नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः, कि हे पार्वती देवी, ये जान लो कि भगवान श्री नारायण के भक्त इतने महान होते हैं कि चाहे वो स्वर्ग में हो, नरक में हो, मुक्त अवस्था में हो, वो केवल भगवान की सेवा ही करते रहेंगे, उनको और कोई काम ही नहीं है। और इसी बात को कपिल देव बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में। कपिल देव कहते हैं, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। कपिल देव अपनी माता देवहूति को उपदेश दे रहे हैं कि जो उनके भक्त हैं वो इतने महान होते हैं कि अगर भगवान स्वयं दीयमानाम न गृह्णन्ति, अगर भगवान के भक्त स्वयं उनको ये चार मुक्तियों का भेद देते हैं, विना मत सेवनम जना, वो स्वीकार नहीं करते हैं अगर वहां सेवा करने की संधि नहीं मिली तो। कौन से प्रकार की मुक्तियां स्वीकार नहीं करते हैं? यहां कपिल ने बताते हैं, सालोक्य, सारष्टि, सामीप्य, सारूप्यम और एकत्वम, एकत्वम मतलब सायुज्य, भगवान के निराकार में लीन हो जाना। तो कपिल देव कहते हैं मेरे भक्तों को ये पांचों प्रकार की मुक्तियों से कुछ लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि चार प्रकार के जो वैष्णव मुक्तियां हैं अगर भगवान चाहे तो हमें देंगे, लेकिन हमें कोई इच्छा नहीं है, हमें केवल भगवान की सेवा करने की इच्छा है। ये होती है भक्तों की महानता। इसलिए भगवान अपने भक्तों के इतने ऋणी हो जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान केवल मौका ढूंढते हैं अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए, चांस देखते हैं। जैसे भक्त भगवान का गुणगान करने के लिए केवल मौका ढूंढते हैं, चांस मिला बस बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई व्यापारी होता है, मौका देखता है पैसे कमाने का, मौका मिला कमा लेता है। वैसे भगवान अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए मौका देखते हैं, चांस मिला तो बस बस अमृत की धारा के समान अपने भक्तों का गुणगान करते हैं। और इस संदर्भ में एक सुंदर लीला है जो आपको हम केवल संक्षेप में सुनाएंगे। ये कथा शायद आपने सुनी होगी कई बार, और वो है महाराज अम्बरीश और दुर्वासा मुनि की। अम्बरीश महाराज राजा राज ऋषि थे, भगवान के बड़े महान भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। दुर्वासा मुनि बड़े ऋषि थे, योगी थे, लेकिन भगवान के भक्त नहीं थे। वो अम्बरीश महाराज के दरबार में आए एक बार, जबकि अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत का पालन कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, और उपवास का पारण करने ही वाले थे, तोड़ने ही वाले थे। लेकिन दुर्वासा मुनि ने कहा मैं स्नान करके आता हूं और फिर हम साथ में प्रसाद ग्रहण करेंगे। अभी दुर्वासा मुनि को समय लग गया और अम्बरीश महाराज का उपवास तोड़ने का समय बीत के जा रहा था, और अगर इस समय उपवास न तोड़ते तो व्रत भंग हो जाता, और दूसरी ओर अगर उपवास तोड़ देते तो दुर्वासा मुनि का निरादर होता। इसलिए उन्होंने सोचा क्या किया जाए, तो उन्होंने केवल दो बूंद चरणामृत ग्रहण किए, जो कि उपवास तोड़ने के भी समान है और उपवास रखने के भी समान है। लेकिन दुर्वासा मुनि को पता चल गया। दुर्वासा मुनि जब आए बड़े क्रोधित हुए। दुर्वासा मुनि शिवजी के अंश अवतार हैं, तो जैसे शिवजी भी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं और जल्दी खुश हो जाते हैं, दुर्वासा मुनि भी वैसे थे। बड़े क्रोधित होकर उन्होंने अपने एक बाल निकाला सर से और उसको नीचे फेंक कर अपनी योग सिद्धि से एक राक्षस बनाया, भयंकर राक्षस। और वो राक्षस आक्रमण करने लगा अम्बरीश महाराज के ऊपर, हत्या करने के लिए। महाराज अम्बरीश केवल हाथ जोड़कर खड़े रहे भगवान का स्मरण करते हुए, घबराए नहीं, हाय हाय करके भागे नहीं, पुलिस पुलिस बचाओ बचाओ नहीं, खड़े रहे वहां पर भगवान का स्मरण करते हुए। और जब वो आक्रमण कर रहे थे, अम्बरीश महाराज तो शांत बैठे, लेकिन भगवान शांत नहीं बैठे। भगवान अपने भक्तों का निरादर या भक्तों के ऊपर आक्रमण कभी सहन नहीं कर सकते हैं। भले भक्त अपना अपमान सहन कर ले, लेकिन भगवान भक्त का अपमान कभी नहीं सहन करते हैं। इसलिए भक्तों के संग में रहते हुए हमें भक्तों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। अगर हम भक्त भक्तों की निंदा करेंगे तो फिर हमारी भक्ति में ये बड़ा अड़चन बन जाता है और हमारे हृदय में द्वेष भावना जागृत होती है, और जिसके हृदय में द्वेष है वो भगवान के प्रति आकर्षित कभी भी नहीं हो सकता है। और खास करके इधर उधर जाके दूसरे भक्तों की निंदा करना, ये तो सबसे बड़ी बात है। इसको इससे बिल्कुल हमें दूर रहना चाहिए। जो भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं उनको केवल भक्तों का गुणगान करना चाहिए, जैसा भगवान अपने ही उदाहरण से आगे चल के दिखाने वाले हैं। तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र जब आया तो उसने उस राक्षस को भस्म कर दिया, लेकिन सुदर्शन चक्र वहां रुका नहीं, अब सीधे आया उसके ऊपर जिन्होंने यह राक्षस को बनाया था, अर्थात दुर्वासा मुनि के ऊपर। अब दुर्वासा मुनि चले भागे और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र, आगे आगे दुर्वासा मुनि, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे उसके उनके पीठ को जलाया जा रहा था। और दुर्वासा मुनि ऐसे भागे सारे ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष से भागे, लेकिन जहां भी वो जाए, पहाड़ों में, सागरों में, गुफाओं में, जंगलों में, सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहे, पीछा करता रहे। देवलोक में गए इंद्र, वरुण, चंद्र, यहां तक कि शिव जी, ब्रह्मा जी के पास गए, सभी ने कहा जल्दी जल्दी कृपया जाइए, नहीं तो हमारे पास आ जाएगा सुदर्शन चक्र, हम कुछ नहीं कर सकते, ये नारायण का चक्र है, हमारे ये बस की बाहर है, हम नहीं कुछ कर सकते, आप केवल वैकुंठ में नारायण के पास जाइए। तो फिर दुर्वासा मुनि इस समय उनके लिए सुदर्शन चक्र की गर्मी असहनीय हो रही थी, जाके वैकुंठ में पहुंचे, नारायण के चरणों में दंडवत पूरा डाल दिया, कहा बचाइए बचाइए, आप ही अपने भक्तों के ऊपर बड़े कृपालु रहते हैं, तो कृपया मुझे बचाइए। तो उस समय नारायण ने देखा दुर्वासा मुनि की क्या दशा है, और भगवान नारायण ने सुंदर श्लोक बोले, वो दुर्वासा मुनि से कहने लगे, अहम भक्त पराधीन हे स्वतंत्र द्विजा साधु ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जन प्रिय। वो कहने लगे, हे ब्राह्मण, हे द्विज, ये जान लो अहम भक्त पराधीन, मैं मेरे भक्तों का अधीन हूं, साधु भीर ग्रस्त हृदय, मैं साधुओं के हृदय में हूं, उन्होंने मुझे वश में कर लिया है, मैं पूरी तरह से साधुओं के भक्तों के कंट्रोल में हूं, उनके वश में हूं। ही अस्वतंत्र इव द्विज, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है, हालांकि भगवान को शास्त्र में स्वराट कहा गया है, स्वराट मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र है, कुछ भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के सामने स्वतंत्र नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं, मैं खुद सुदर्शन चक्र को हटा नहीं सकता हूं, हाँ मैंने फेंक दिया, लेकिन इसको वापस बुलाने की शक्ति मेरे में नहीं है, क्योंकि मैं मेरे भक्तों का अधीन हूं, मेरे भक्त मुझे वश में कर लेते हैं, और इसलिए भक्त मेरे इतने प्रिय हैं कि भक्तों के भक्त भी मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। और आगे नारायण बोलने लगे, मई नर्बिद्ध हृदय साधव समदर्शन वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रिह सत्पतिम यथा। मई निर्बद्ध हृदय, मेरे जो भक्त हैं उन्होंने क्या किया है, मुझे उनके हृदय में बांध के रखा है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकता, उनके हृदय में बांध के रखा है, तो मैं कैदी हो गया हूं उनके हृदय में। और उनके गुण क्या होते हैं, साधव समदर्शन, वो सबके प्रति करुणा दृष्टि मैत्री की भावना रखते हैं, वशे कुर्वन्ति माम भक्त्या, और मेरे भक्त जो हैं मुझे वश में करते हैं, कैसा वश में करते हैं, ऑर्डर देके नहीं, प्रेम से, जैसे सत स्त्री सत पति यथा, जैसे एक सती स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्री होती है, वो अपने पति को कैसे वश में रखती है, उसी तरह से मेरे भक्त मुझे वश में रखते हैं, हे ना हे दुर्वासा मुनि, तो जान लो कि मेरे भक्त कितने महान हैं। और फिर भगवान नारायण बोलते हैं, मत सेवया प्रतीतंते सालोक्यादि चतुष्टयम् नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोन्यत् काल विप्लुतम्। वो कहते हैं, मत सेवया प्रतीतम थे, मेरे सेवा करके मेरे भक्त पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं, मेरे सेवा के अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए होता। सालोक्य आदि चतुष्टयम, ये चार प्रकार के वैष्णव मुक्ति होते हैं, वो भी उनको नहीं चाहिए। न इच्छन्ति सेवया पूर्णाह, क्योंकि सेवा करने से पूर्ण संतुष्ट है वो, तो उनको ये चार प्रकार की मुक्तियां भी नहीं चाहिए। तो कुतोन्यत काल विप्लुतम, जब उनको चार प्रकार की वैष्णव मुक्तियां भी नहीं चाहिए, तो संसार के वरदानों की बात तो दूर है, इनको कहां से मांगेंगे वो। और फिर आगे भगवान नारायण बोलने लगे कि देखो, मेरे भक्तों ने मेरे लिए सब कुछ त्याग किया है, उनका घर, उनका धन, उनके रिश्तेदार, उनका नाम, कभी कभी उनका प्राण भी त्याग देते हैं मेरे लिए, तो मैं उनको कैसे त्याग सकता हूं? ये संभव नहीं है। और फिर आगे चल के भगवान बताते हैं, साधवो हृदयो मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम। वो कहते हैं कि साधु मेरे हृदय में है और मैं साधुओं के हृदय में हूं। मत अन्य जानन्ति, मेरे अलावा वो कुछ भी नहीं जानते हैं, ना हम तेभ्यो मनागपि, और मैं उनके सिवाय कुछ भी नहीं जानता हूं। तो ये मेरे भक्त और मेरे बीच में संबंध है, मैं मेरे भक्त के हृदय में हूं, भक्त मेरे हृदय में है, भक्त मेरे अलावा भक्त कुछ नहीं जानता और भक्त के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तो ये मेरे महान भक्त हैं हे दुर्वासा मुनि। अम्बरीश महाराज के पास जाओ, वहां जाकर उनकी क्षमा याचना करो, केवल वही तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रख लो कि कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग अगर एक भक्त के खिलाफ करता है तो वही शक्ति उल्टा आकर उसके ऊपर ही आक्रमण करेगा। जैसे कि तुमने तुम्हारी शक्ति का प्रयोग अम्बरीश महाराज के ऊपर किया और वही शक्ति सुदर्शन चक्र के रूप में अब तुम्हारे ऊपर आ गई है। इसलिए कभी भी भक्त के प्रति ऐसे आक्रमण या उनका तिरस्कार नहीं करना। तो जाओ, इस तरह से तुम शांति की प्राप्ति करोगे। और फिर अम्बरीश महाराज के पास आए दुर्वासा मुनि। अम्बरीश महाराज ने तो तुरंत उनकी क्षमा कर दी और फिर सुदर्शन चक्र जो है वो निकलकर वापस नारायण के पास चले गए। तो हम देखते हैं कि भगवान नारायण कितना पसंद करते हैं उनके भक्तों का गुणगान करना। तो भगवान अपने भक्तों के इतने ऋणी क्यों हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि वैष्णवों को संसार की बात तो क्या, पांचों प्रकार की मुक्तियां उनको नहीं चाहिए, केवल भगवान की भक्ति उनको चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करते थे संन्यास लेने के बाद, तो उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के एक ब्राह्मण थे जो कि एक मंत्री थे राजा प्रताप रुद्र के, मायावादी थे। मायावादी मतलब क्या? मायावादी मतलब वो व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व को निराकार समझते हैं और सोचते हैं कि हम भी भगवान हैं, जीव भी भगवान है, और जब जीव मुक्ति पा जाएगा तो भगवान में लीन होकर वो भी भगवान बन जाएगा। मायावादी लोगों की धारणा ऐसी होती है। तो इस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा था कि चैतन्य महाप्रभु एक वैष्णव सन्यासी हैं, बहुत ही सुंदर हैं, नवयुवक हैं। उन्होंने सोचा कि सन्यासी का धर्म होता है वेदांत का पाठ करना, तो उन्होंने गोपीनाथ आचार्य जो कि चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे उनसे कहा कि मैं श्री कृष्ण चैतन्य इनको मैं लगातार 7 दिन वेदांत का उपदेश देना चाहता हूं, क्योंकि सन्यासी अपने व्रत का पालन तब कर पाएगा जब वो ज्ञान में स्थित होगा। ये तो बड़ा नवयुवक सन्यासी है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए मैं ऐसे करना चाहता हूं। गोपीनाथ आचार्य ने कहा, आप नहीं जानते हैं कि ये तो स्वयं भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने नम्रता को प्रकट किया और कहा कि ये तो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं, इसलिए उनसे मुझे ये उपदेश ग्रहण करना उचित होगा। और फिर अगले दिन जब चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों जगन्नाथ के मंदिर में आए, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने वेदांत सुनाना आरंभ किया। लगातार 7 दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रवचन दिया, सुबह से शाम तक वेदांत के ऊपर, मायावादी भाष्य। जब 7 दिन समाप्त हो चुके तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, मैंने 7 दिन लगातार भाषण दिया है लेकिन तुमने एक भी शब्द नहीं कहा 7 दिनों में, एक भी प्रश्न तुम्हारे मन में नहीं आया इस विषय के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु ने जवाब दिया, मैं तो ध्यान से सुन रहा था लेकिन ऐसी कई बातें हैं जो मुझे समझ में नहीं आई। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे, ठीक है, समझ में नहीं आए तो संशयों का निवारण करने के लिए तो कम से कम प्रश्न पूछना चाहिए था, वो भी नहीं किया। तो महाप्रभु ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो सूत्र आपने सुनाए उनको तो मैं बहुत अच्छे ढंग से समझ गया लेकिन आपकी जो टीका है उसको मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि आपने इन सूत्रों का मतलब जो इतना तोड़ मोड़ डाला है कि बिल्कुल एक विपरीत अर्थ ही आपने निकाला है वेदांत से। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत के ऊपर भाषण अपना आरंभ किया और ऐसे बोलते गए शायद और एक रविवार को चैतन्य महाप्रभु का भाषण जो है उसको संक्षेप में आपको सुनाएंगे। और जैसे बोलते गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य बिल्कुल निरुत्तर हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, आश्चर्यचकित हो गए। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सार्वभौम भट्टाचार्य बिल्कुल विस्मित हो गए हैं तो उन्होंने कहा, विस्मित होने की कोई बात नहीं है, ये भक्ति के लक्षण है। और फिर उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक कहा, आत्माराम श्लोक, और कहा कि ये स्वाभाविक है, सभी लोग भगवान के गुणों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, इसलिए आपका विस्मित होना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आप मुझे ये आत्माराम श्लोक समझाइए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पहले आप इसके ऊपर टीका कीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 अलग अलग अर्थ दिए इस श्लोक का और फिर चैतन्य महाप्रभु से कहा, अब आप कहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने 18 और अर्थ दिए इन 9 अर्थों के अलावा, और इनको सुनकर अब तो सार्वभौम भट्टाचार्य वाकई निरुत्तर हो गए, उनको कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं था। और इसके बाद उनको समझ में आया कि वास्तव में ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है या कोई असाधारण व्यक्ति भी नहीं है, ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान श्री कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया, उनके भक्त हो गए और उसके बाद में हमेशा चैतन्य महाप्रभु के संग में रहते थे और उनके निकट के पार्षद बन गए, इतने पक्के भक्त बन गए कि इसके बारे में एक सुंदर सी छोटी सी लीला है। एक दिन जब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो उन्होंने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक उच्चारण किया जो कि भागवत के 10वें स्कंद से है, ब्रह्मा जी की प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण के प्रति, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या किया कि इस श्लोक के 2 शब्द बदल दिए, जो मूल श्लोक है भागवत का उसको पूरा पूरा न कहते हुए केवल 2 शब्द बदल दिए, बल्कि एक ही शब्द बदल दिया। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वागपूर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो भक्ति पदे सदाय भाक। इस श्लोक का मतलब है, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, जो भी व्यक्ति आपकी अनुकंपा या कृपा की प्रतीक्षा करता है और प्रतीक्षा करते करते जो भी उसके जीवन में दुख आ रहे हैं उनको वो अपने ही किए हुए पूर्व जन्मों के पाप समझ लेता है और साथ साथ अपने हृदय से, अपने वचनों से, अपने कार्यों से वो भगवान की सेवा में तत्पर रहता है, ऐसा व्यक्ति आपके शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त करने के लिए योग्य है। भक्ति पदेश दायभाक, दायभाक मतलब अधिकारी व्यक्ति, जो व्यक्ति ऐसे करता है उसका अधिकार हो जाता है आपकी भक्ति प्राप्त करने का। लेकिन क्या परिवर्तन किया था सार्वभौम भट्टाचार्य ने? वास्तव में भक्ति पदे नहीं था, वो मुक्ति पदे था। ब्रह्मा जी ने जो श्लोक का उच्चारण किया था उसमें था मुक्ति पदे सदाय भाग, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुक्ति पदे नहीं कहा, भक्ति पदे कह दिया। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत नोट कर लिया इस बात को और कहा कि हे सार्वभौम, आपने ये शब्द बदला क्यों? भागवत का श्लोक है मुक्ति पदे सदाय भाग और आप बोल रहे हैं भक्ति पदे सदाय भाग, इसका क्या मतलब है? तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलने लगे कि जो भी व्यक्ति भगवान की सेवा करता है उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है, जो कि इतना श्रेष्ठ, इतना तीव्र है, इतना स्वादिष्ट रसीला है कि इस रस के सामने मुक्ति बिल्कुल तुच्छ हो जाता है। बल्कि जो लोग भगवान की भक्ति से विमुख हैं, जो ज्ञानी हैं, योगी हैं इत्यादि, भगवान ऐसे विमुख लोगों को दंड देते हैं उनको निराकार में लीन करा के। मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं कि भगवान के निराकार में लीन हो जाना ये एक दंड है। तो क्यों दंड है, कोई बता सकते हैं? हाँ, क्योंकि वहां पर भगवान की सेवा नहीं हो सकती है। तो भगवान के भक्तों का दृष्टिकोण क्या रहता है कि अगर भगवान की सेवा के चांस नहीं मिला तो हमारे क्या, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, एक दंड मिलने के बराबर है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे कि ऐसे व्यक्ति जो कि इस प्रकार के निराकार में लीन होते हैं उनको ये इस प्रकार का दंड मिलता है कि वो भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि पांच प्रकार की मुक्तियां हैं, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, सारूप्य, एकत्वम। इनमें से किसी भी मुक्ति को भगवान के भक्त चाहते नहीं हैं। और जहां तक एकत्व है, एकत्व की बात तो दूर है। एकत्व जो लोग भगवान के निराकार में लीन होना चाहते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं इत्यादि, वो लोग तो असुरों के बराबर हैं। क्यों? क्योंकि जिन असुरों का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था उनको भी निराकार में लीन होने की संधि मिली थी। जैसे कि जब भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था तो कंस की आत्मा गई और निराकार ज्योति में लीन हो गई। तो शास्त्र में बताया जाता है कि जब भी कोई असुर भगवान श्री कृष्ण के हाथों मारा जाता है तो उसको निराकार मुक्ति मिलती है, सायुजी मुक्ति, भगवान के निराकार में मुक्त हो जाता है। और जो लोग ज्ञान मार्ग के पथ में चलते हैं, ज्ञान योगी हैं, वो भी भगवान के निराकार में लीन हो जाते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे थे कि ये दोनों बराबर के हुए। मतलब जो भगवान के निराकार में लीन होना चाहते हैं वो तो असुरों के बराबर है, क्योंकि दोनों की गति एक ही है, दोनों को भगवान के निराकार में लीन होना पड़ता है। और सायुज भी दो प्रकार की होती है, एक तो भगवान के निराकार में लीन होना और दूसरा भगवान के दिव्य शरीर में प्रवेश करना। ये दूसरे प्रकार की सायुज मुक्ति ये हम श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं। किसको कह सकते हैं कब? शिशुपाल, बहुत अच्छा। जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, युधिष्ठिर महाराज के सभा में जब वो राजसूय यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे तो उस समय शिशुपाल की गर्दन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दी और हाहाकार मच गया उस समय सारे भरी सभा में। और सबने देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक तेजस्वी प्रकाशमान आत्मा बाहर निकल आई और सीधे जाके भगवान श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गई, मिल गई। तो यह है दूसरे प्रकार की सायुज मुक्ति। वैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि वैसे भी सायुज मुक्ति तुच्छ है, निंदनीय है, लेकिन इस प्रकार की जो सायुज मुक्ति है उसका और भी तिरस्कार करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा है मां के गर्भ से जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर जीवन के अनेक प्रकार के दुखों से परेशान हो जाता है और फिर मां के पास आके कहता है कि मां तुमने मुझे जन्म दिया, अब मैं बड़ा परेशान हो गया हूं इस संसार से, तो मैं वापस आपके घर में प्रवेश करना चाहता हूं, मैं संसार को पसंद नहीं करता, तो मां क्या कहेगी? अरे मेरा बेटा तो पागल हो गया है, कौन मां ऐसे चाहेगी। तो ठीक उसी प्रकार से जो जीव भगवान के दिव्य शरीर में लीन होना चाहते हैं वो और भी निम्न श्रेणी के हैं, और खास करके पतंजलि की पद्धति में जो योगी होते हैं, जो भगवान के रूप के ऊपर चिंतन करते हैं लेकिन इस उद्देश्य से कि उस रूप में उनका मिलन हो जाएगा, भगवान के रूप का इसलिए चिंतन नहीं करते कि उनकी सेवा करेंगे, उस रूप में मिल जाने के लिए उनका चिंतन करते हैं। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो सायुज मुक्ति चाहते हैं भगवान के निराकार में लीन होने के लिए, और जो योगी लोग होते हैं वो भगवान के रूप का चिंतन करते हैं उनके दिव्य शरीर में लीन होने के लिए। तो दोनों ही नरकीय हैं और भक्त को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो इतने शुद्ध होते हैं कि उनको ऐसे कोई भी मुक्ति शब्द से ही घृणा और भय मन में उत्पन्न होता है। इसलिए जब मैंने देखा कि यहां पर मुक्ति शब्द आया है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने तुरंत मुक्ति शब्द को बदल के भक्ति बना दिया, क्योंकि मुक्ति शब्द कहने से सबको यही लगता है कि भगवान में लीन हो जाना, लेकिन भक्ति हाँ ये तो बहुत अच्छा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को सुना और कहने लगे आपकी भावना बड़ी अच्छी है सार्वभौम, लेकिन मैं आपको समझाऊं कि मुक्ति पदे या मुक्ति पद इस शब्द का अर्थ क्या है। मुक्ति पद वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करता है, क्यों? क्योंकि मुक्ति पद का अर्थ है वो व्यक्ति जिनके चरण कमलों में, जिनके पदों में नाना प्रकार की मुक्तियां निवास करती हैं। देखिए कितनी सुंदर बात चैतन्य महाप्रभु ने बताई, मुक्ति पदे भी भगवान श्री कृष्ण, मुक्ति पद ये भी भगवान श्री कृष्ण का नाम है, जिनके चरण कमलों में अनेक प्रकार की मुक्तियां निवास करती हैं। भगवान श्री कृष्ण का और एक नाम है मुकुंद, जो दिव्य आनंद प्रदान करके मुक्ति दिलाते हैं, ये है मुकुंद। तो भगवान श्री कृष्ण क्योंकि नाना प्रकार की मुक्ति प्रदान कर सकते हैं इसलिए उनका नाम है मुक्ति पद। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि और एक दूसरा अर्थ भी है इसका। श्रीमद् भागवत में यह बताया गया है कि श्रीमद् भागवत के 10 विषय के ऊपर चर्चा है। श्रीमद् भागवत में कौन से विषय हैं जिनके ऊपर सुखदेव गोस्वामी ने प्रवचन दिया था? 10 विषय। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मनवंतरेशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रयः। ये 10 विषयों की चर्चा आज हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना कहना काफी है कि 9वां जो विषय है वो है मुक्ति और 10वां विषय है आश्रय। ये हर एक विषय एक एक स्कंद से संबंधित है। तो मुक्ति शब्द 9वां स्कंद से संबंधित है और ये आश्रय 10वें स्कंद से संबंधित है। 10वें स्कंद में तो केवल कृष्ण लीला है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा मुक्ति मतलब ये 9वां विषय, मतलब मुक्ति ही नहीं भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिया है इसलिए मुक्ति पद। तो ये दो अर्थ मैं देखता हूं मुक्ति पद के। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ये मुक्ति पद को बदल के भक्ति पद करना ये उचित नहीं है। वैसे भी ये शास्त्रों की बात है, शास्त्रों के शब्द हमें बदलने नहीं चाहिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहने लगे आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, परंतु हालांकि मुक्ति शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं लेकिन साधारणतः जब हम मुक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं तो लोगों के मन में यही विचार आता है कि भगवान के निराकार में लीन हो जाना। इसलिए ये मुक्ति शब्द कहने से मुझे घृणा हो जाती है, इसलिए मैंने इसको बदल दिया। जब मुक्ति शब्द कहते हैं घृणा भय हो जाता है, लेकिन जब भक्ति शब्द का उच्चारण करते आनंद आता है। इसलिए मैंने ठीक समझा कि इसको भक्ति पदे कहें और मुक्ति पदे नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य की इस बात को सुनी, बड़े खुश हो गए, उनका आलिंगन किया और सारे वहां जो उपस्थित भक्त थे वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि पारस मणि को हम तब तक पहचान नहीं सकते जब तक कि वो किसी लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य का परिवर्तन देखकर सभी लोग जान गए कि ये श्री कृष्ण चैतन्य या चैतन्य महाप्रभु ये स्वयं श्री कृष्ण ही हैं और कोई नहीं है। क्यों, ऐसी कौन सी बात थी सार्वभौम भट्टाचार्य के परिवर्तन में? सार्वभौम भट्टाचार्य कट्टर मायावाद थे, बल्कि उन्होंने वो मायावादियों के नेता थे उस समय सारे जगन्नाथपुरी में, सबसे बड़े विद्वान। यहां तक कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को मायावादी बनाने का प्रयास किया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं श्री कृष्ण हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को मायावादी बनाने के बजाय खुद सार्वभौम भट्टाचार्य वैष्णव बन गए, भक्त बन गए। तो ऐसा परिवर्तन जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे व्यक्ति जो कि इतना कट्टर मायावाद था, जो निराकार में लीन होने की बात करता था, मुक्ति की बात करता था, आज वो भक्ति में इतना तीव्र हो गया है कि मुक्ति शब्द के उच्चारण मात्र से उसको घृणा होने लगती है। तो ये अवश्य कौन से पारसमणि है जिन्होंने ये परिवर्तन किया है, ये अवश्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब भक्त भक्ति के रस को आस्वादन करता है तो उसके लिए सब प्रकार के मोक्ष मुक्ति तुच्छ हो जाती है। इसलिए भक्ति का ये गुण है मोक्ष लघुताकृत। भक्त को चाहिए केवल सेवा। हाँ, शुरुआत में भले भक्त मन में इच्छा रखे कि ठीक है मैं बहुत परेशान हुई संसार में, भगवान के धाम में जाना है, ठीक है, लेकिन जैसे भक्त आगे बढ़ता है भक्ति में तो फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है जैसे चैतन्य महाप्रभु ने किया। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है, सुंदर स्त्री की अभिलाषा नहीं, मुझे अनुयायियों की सालंकार कविता की मुझे अभिलाषा नहीं है, मैं यही चाहता हूं कि जन्म जन्मांतर मैं आपकी अहितु की सेवा में स्थित रहूं और मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखलाया है कि हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए। इसलिए भक्त जन्म मृत्यु के चक्कर से भी छुटकारा नहीं चाहता है। अगर भगवान प्रदान कर देंगे तो ठीक है, और वैसे भी भगवान तो प्रदान करने वाले हैं ही, लेकिन भक्त की भावना ऐसे नहीं होती। भक्त की भावना होती है अगर भगवान चाहें कि मैं नरक में जाकर सेवा करूं तो मैं सदा नरक में रहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मोक्ष की क्या लेना देना है, भगवान की सेवा ही सर्वोच्च वस्तु है। और भगवान की भक्ति करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? उनके पवित्र नामों का जप और कीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो भक्ति का तीसरा लक्षण मोक्ष लघुताकृत, इसके बारे में आज चर्चा हुई। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। क्या ये विषय आपको बहुत भारी लगा, समझ के बाहर था कि समझ में आया? समझ में आया। आज ज्यादा कोई कहानियां स्टोरी वोरी नहीं थे, क्योंकि आखिर केवल स्टोरी वोरी सुनते रहेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत दर्शन भी हमें जानना चाहिए।